राजवंश एम्पायर और मित्तल एम्पायर की तरफ से थ्रो की गई पार्टी काफी जोरों शोरों पर थी। पार्टी के अंदर राघव ने कियारा को बताया कि उसने उसकी इंसल्ट करने वाली लड़की को सजा दे चुका है, वो उसकी कंपनी को रॉ मटेरियल नहीं बेचेगा जिससे उसे नुकसान होगा। हालांकि ये सब जानकर कियारा को अच्छा नहीं लग रहा था और वो राघव को यही कह रही थी कि हो सकता है उसने किसी परेशानी में वो सब कहा होगा, पर राघव उसकी कहाँ सुनने वाला था। राघव और कियारा की बात सुनकर नक्श वहाँ पर आया। उसने बॉटल ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें वो काफी अच्छा दिख रहा था। नक्श ने उनकी बातें सुन ली थी। वो उनके पास जाकर एग्रेसिव होकर बोला, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर मित्तल, लेकिन मैंने आपकी बातें सुन ली हैं और सच कहूँ तो उन्हें सुनने के बाद मैं अपनी बात रखे बिना खुद को रोक नहीं सका। नक्श कुछ पल रुका और फिर कियारा की तरफ देखकर बोला, कोई इंसान कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, लेकिन उसे किसी को भी इतने कड़वे शब्द नहीं कहने चाहिए। चलो मान लिया वो परेशान थी और तुम्हारी मदद करने की हालत में नहीं थी, फिर भी तुम्हें प्यार से मना कर सकती थी। उसे ये सब कहकर तुम्हारा दिल दुखाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये तो कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी कि तुम्हें जीने का हक नहीं है। उसके इतना सब कुछ करने के बाद मिस्टर मित्तल ने उसे सबक सिखाने के लिए जो भी किया है वो मुझे कम ही लग रहा है। नक्श अपनी तरफ से हर एक चीज को बढ़ा चढ़ाकर कह रहा था। राघव ने भी उसकी बात पर सहमति जताई और फिर प्यार से कियारा के बालों को सहलाकर कहा, इसके लिए मैं मिस्टर नक्श राजवंश का थैंक यू कहना चाहूंगा जो उन्होंने मुझे उस लड़की की कंपनी के बारे में बताया, वरना मुझे उस छोटी सी कंपनी के बारे में कभी पता नहीं चलता। हाँ, नक्श ने ही इशिका से बदला लेने के लिए राघव को इशिका की कंपनी और रॉ मटेरियल वगैरह भेजे जाने की सारी बात के बारे में बताया था। नक्श ने हल्का मुस्कुराकर कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है और वैसे भी उसे सबक सिखाना ही था। कियारा उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। उसने टॉपिक बदलते हुए नक्श से पूछा, मिस सिंघानिया कहाँ है? वो अपना मेकअप ठीक करने के लिए रेस्टरूम में गई हुई है, नक्श ने जवाब दिया। कियारा ने अपनी पास नैना से कहा, ठीक है मॉम, हम मिस सिंघानिया के पास चलते हैं। नैना ने उसकी बात पर सहमति जताई। वैसे भी वो नक्श और राघव की बातों से काफी असहज महसूस करने लगी थी। उसने कियारा की व्हीलचेयर को धक्का दिया और रेस्टरूम की तरफ गई। जैसे ही वो रेस्टरूम के पास पहुंचे, रेस्टोरेंट के बाहर आयशा निकली अपना टचअप करने के बाद। आयशा का ध्यान कियारा की तरफ नहीं था, लेकिन कियारा ने उसे देख लिया था। उसे देखते ही कियारा ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बांध ली थी। कियारा की इस हरकत पर नैना ने ध्यान दिया। उसने पूछा, क्या हुआ? कियारा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब पहले वो राघव से बात कर रही थी तो उसे लगा कि आयशा को इतनी बड़ी सजा भी देना सही नहीं होगा, लेकिन आयशा को देखते ही उसे उस दिन की सारी बातें याद आ गईं। अब कियारा को आयशा पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी और उसे यही लग रहा था कि उसके भाई ने जो भी किया वो सही किया। कियारा ने अपना फोन निकाला और तुरंत राघव को मैसेज करते हुए लिखा, वो वाली मिस सिंघानिया भी इसी पार्टी में है क्या? आप उसे यहाँ से निकाल नहीं सकते, मैं उसे देखना भी नहीं चाहती हूँ। राघव ने कियारा का मैसेज पढ़ा। तब तक आयशा वहाँ पर आ चुकी थी। आते ही उसने प्यार से नक्श के हाथ में हाथ डाल दिया था। वो राघव से बात करने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि राघव के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। राघव ने आयशा की तरफ देखकर पूछा, क्या आपकी बहन भी इस पार्टी में आई है? इशिका का जिक्र होते ही नक्श और आयशा के चेहरे के भाव भी बिगड़ गए थे। उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। उन तीनों ने पार्टी हॉल में इशिका को देखने की कोशिश की, लेकिन हॉल काफी बड़ा था और लोग भी काफी ज्यादा थे, इस वजह से वो इशिका को देख नहीं पाए। इधर उधर देखते हुए आयशा ने राघव से पूछा, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? राघव ने गुस्से में नक्श को घूरते हुए कहा, मैंने सुना है कि वो लड़की भी इस पार्टी में आई है। इसका क्या मतलब है मिस्टर राजवंश? उस लड़की का हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है और ना ही आपके साथ। वो फिर इस पार्टी में कर क्या रही है? मैं अभी देखता हूँ, नक्श ने जल्दी से जवाब दिया, ये सोचकर कि राघव नाराज हो गया तो उसका ही नुकसान है। नक्श वहाँ से चला गया और इशिका को ढूंढने लगा। इशिका एक कोने में बैठकर आराम से स्नैक्स के मजे ले रही थी। हालांकि उसके आसपास के आदमियों का ध्यान उसी के ऊपर था। वो उसकी खूबसूरती में खोए हुए थे, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो जाकर इशिका से बात कर सके। इशिका वहाँ अकेली बैठी हुई थी, तभी रोहन उसके पास आया और उसे देखकर एक्साइटेड होकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो पार्टी में जाना पसंद नहीं है ना, वैसे यहाँ तुम किसके साथ आई हो? उसके आखिरी सवाल पर इशिका ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, क्यों मैं अकेली नहीं आ सकती क्या? अकेला होना भी अपने आप में एक अच्छी फीलिंग होती है। राघव ने बिना कुछ कहे कंधे उचका दिए। वो दोनों बातें कर रहे थे तभी उनकी नजर नक्श पर पड़ी, जिन्हें कुछ छोटे बिजनेसमैन का ग्रुप घेर कर खड़ा हुआ था। उनकी बातें उन दोनों के कानों में पड़ रही थी, तो इशिका और रोहन अपनी बातें छोड़कर उनकी तरफ देखने लगे। नक्श को ये माहौल पसंद आ रहा था, उसे सब सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रहे थे। उनमें से एक बिजनेसमैन बोला, मिस्टर नक्श राजवंश, सुना है कि आपका भी प्रमोशन होने वाला है और इस प्रोजेक्ट में आप एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। उम्मीद है कि हमें फ्यूचर में आपका गाइडेंस और साथ मिलेगा। दूसरा बिजनेसमैन बोला, जरूर, ये सब आप ही का प्लान होगा। मैंने सुना है कि आप काफी इंटेलिजेंट हैं। लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वैसे काफी कुछ मेरा काम है, लेकिन आप जानते हैं कि मेन प्लानिंग अभिमन्यु चाचू ही करते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी तो उन्हीं के पास है। हाँ वो तो सही है, मिस्टर अभिमन्यु राजवंश काफी यंग और टैलेंटेड हैं, लेकिन उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उनके मुकाबले आप काफी विनम्र हैं। वहाँ खड़े दूसरे बिजनेसमैन ने मुंह बनाकर कहा। सब लक्ष्य की तारीफ करते हुए उसे फ्यूचर में मिलने वाले प्रमोशन के लिए बधाइयां देने लगे। उनकी बातें सुनकर रोहन के चेहरे पर सार्केस्टिक स्माइल थी। वो बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे राघव मित्तल का साथ मिल कैसे रहा है, इस बार किसको ये सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। फिर अचानक वो उदास होकर बोला, इसका मित्तल फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी ये इतना एटीट्यूड दिखा रहा है, जबकि दूसरी तरफ अभिमन्यु है, उसके मित्तल फैमिली से रिलेशन होने के बावजूद ना तो वो उसे यूज करता है और ना ही उनसे ठीक से बात करता है। काश उनकी जगह मेरी मित्तल फैमिली से जान पहचान होती तो मैं उनसे ठीक से बात करता, ताकि किसी तरह की गलत फहमी ना होती। उसकी बात सुनकर इशिका ने इधर उधर देखा, उसकी नज़र सामने खड़े गौतम मित्तल और राघव पर गई। उन्हें देखते हुए इशिका ने कहा, चलो आज मैं तुम्हारी मुलाकात मित्तल फैमिली से करवाती हूँ। इशिका इस पार्टी में इसी मकसद से आई थी कि वो अभिमन्यु और मित्तल फैमिली के बीच सुलह करवा दे, लेकिन अब उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। इशिका ने अपने मन में कहा, तुम बाहर से कितना भी रूड और सख्त बन जाओ, लेकिन अंदर से तुम काफी नरम दिल इंसान हो। तुम्हारे साथ टाइम बिताने के बाद इतना तो समझ आ गया है कि तुम बुरे नहीं हो अभिमन्यु, तुमने हमेशा मुझे कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश की है, चाहे अभी थोड़ी देर पहले तैयार होने के मामले में हो या फिर मुझे ठंड लगने पर अपना ब्लेजर निकाल देने के मामले में। तुम्हारे बर्ताव से ये भी साफ है कि तुम मित्तल फैमिली से सुलह नहीं करना चाहते हो।
अभिमन्यु के बर्ताव से इशिका इतना तो समझ गई थी कि उसे मित्तल फैमिली से फिर से रिश्ते बनाने में कोई शौक नहीं है। अगर ऐसा होता तो और भी कई मौके आए थे जिससे वो अच्छे से बात करके अपनी रिलेशन स्ट्रांग कर सकता था। देखा जाए तो उसे प्रॉब्लम मित्तल फैमिली से नहीं, अपनी मॉम से थी, जिसके साथ वो कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ रोहन मित्तल फैमिली से मिलने के लिए एक्साइटेड हो रहा था। इशिका ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, जब तुम्हें सुलह ही नहीं करनी तो मुझे पार्टी में धोखे से क्यों लेकर आए हो, समझ नहीं आ रहा। खैर तुम कुछ नहीं करना चाहते तो मैं भी इस मामले में दखल नहीं दूंगी। ऐसा करती हूँ, रोहन को मित्तल फैमिली से मिलवा देती हूँ ताकि वो दोनों कंपनीज के बीच की रिलेशन कुछ सही कर सके। इशिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी रोहन ने जल्दी से पूछा, क्या सोचने लगी तुम? तुमने मुझे अभी बताया कि तुम मुझे मित्तल फैमिली से मिलवा सकती हो, क्या तुम उन्हें जानती हो? हाँ, मैंने उनके ऊपर एक छोटा सा फेवर किया था। खैर इस बात से क्या फर्क पड़ता है, फिलहाल तो मुझे मित्तल फैमिली से मिलकर उनसे बात करनी है, इशिका ने जवाब दिया। इशिका ने इधर उधर देखा तो उसकी नज़र कियारा और राघव पर पड़ी, जो दूसरी तरफ एक साथ थे। वहां पर गौतम और नैना भी थे। फिर उसने पूरी मित्तल फैमिली को एक साथ देखा तो उसने उनसे मिलने का सोचा। इशिका मित्तल फैमिली से मिलने के लिए जा ही रही थी कि तभी डांस फ्लोर की लाइट डिम हो गई और वहां म्यूजिक बजने लगा। इशिका साइड में हट गई और डांस फ्लोर को भी खाली कर दिया गया था, ताकि जो लोग डांस करना चाहते हैं वो आराम से कर सके। लोग वहां अपने डांस पार्टनर्स ढूंढने लगे और जो लोग अपने पार्टनर्स के साथ आए थे वो उनके साथ डांस फ्लोर पर पहुंचे। इशिका वहां खड़ी थी तभी एक आदमी उसके पास आकर बोला, मिस क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? उसे ही थोड़ी दूर अभिमन्यु बैठा हुआ था, वो कुछ बिजनेस पर्सनैलिटीज़ के साथ बात कर रहा था। म्यूजिक बजते ही उनमें से एक ने कहा, मिस्टर राजवंश क्या आप डांस करना नहीं चाहेंगे? नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है, अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर कहा। सीधे सीधे कहिए ना मिस्टर राजवंश कि मिसेज राजवंश यहाँ नहीं आई हैं तो आप किसी और के साथ डांस नहीं करना चाहते हैं, मानना पड़ेगा, आपकी लॉयल्टी उनके लिए बहुत ज़्यादा है, उनमें से एक हंसते हुए बोला। उसके मुंह से मिसेज राजवंश का जिक्र सुनकर अभिमन्यु के दिमाग में इशिका का ख्याल आया। उसने तुरंत इधर उधर देखा, उसकी नज़र इशिका पर पड़ी तो उसके चेहरे के भाव सख्त होने लगे थे। अभिमन्यु ने देखा कि इशिका के आसपास तीन चार लड़के उसे घेर कर खड़े थे और उसे डांस करने के लिए मना रहे थे। उनमें से कुछ तो राजवंश एम्पायर के लिए ही काम करते थे। अभिमन्यु ने उन सबको वहीं पर छोड़ा और अपने कदम इशिका की तरफ बढ़ा लिए थे। जैसे ही अभिमन्यु उनके पास में गया, उसके कानों में इशिका की आवाज़ पड़ी। इशिका ने जवाब में कहा, आई एम रियली सॉरी पर मुझे डांस करना अच्छा नहीं लगता है। उनमें से एक दो वहां से चले गए थे, लेकिन कुछ एक अभी भी वहीं पर थे। उनमें से एक लड़के ने कहा, अरे आप डांस फ्लोर पर मेरे साथ चलिए तो सही, मैं आपको सिखा दूंगा। नो थैंक्स, इशिका ने सिर हिलाकर कहा। कम ऑन, आजकल सब चलता है और एक डांस ही तो है, तुम इतना भाव क्यों खा रही हो? डांस फ्लोर पर आने के बाद सब अपने आप समझ में आ जाता है, तुम एक बार चलो तो सही। उनमें से एक आदमी कुछ ज्यादा ही जिद कर रहा था। उन सबको टालने के लिए इशिका ने कहा, ओ मैं बताना भूल गई कि मेरे पास तो पहले से ही डांस पार्टनर मौजूद है। कौन है वो? उस आदमी ने भौंय उठाकर पूछा। उसके पूछते ही पीछे से एक आवाज़ आई, मैं हूँ इसका डांस पार्टनर। ये आवाज़ अभिमन्यु की थी। उसे जवाब देने के बाद वो इशिका की तरफ आ रहा था। अभिमन्यु को देखते ही उस आदमी ने तुरंत अपनी नज़रें झुकाकर कहा, मिस्टर राजवंश तो आप हैं इसके डांस पार्टनर। अभिमन्यु ने उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने इशिका की आंखों में देखकर कहा, सॉरी मैंने तुम्हें वेट करवाया। इशिका ने मुस्कुराकर उसे बिल्कुल धीरे से थैंक यू कहा। अभिमन्यु ने उसे उन सबसे बचा लिया था। अभिमन्यु इशिका का हाथ थामकर उसे डांस फ्लोर पर लेकर जा रहा था। जैसे ही वो डांस फ्लोर पर पहुंचे, अचानक वहां हूटिंग की आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने मुड़कर देखा तो नक्श आयशा का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर ला रहा था। आयशा ने नक्श की ड्रेस से मैच करते हुए बॉटल ग्रीन कलर का गाउन पहना हुआ था। डांस फ्लोर पर आते ही नक्श ने डांस करने के बजाय माइक हाथ में लिया और फिर उसमें तेज आवाज में कहा, मिस आयशा सिंघानिया, आज मैं इतने लोगों के सामने कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। नक्श क्या कहने जा रहा था वो आयशा अच्छे से जानती थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और सब लोगों का ध्यान उन पर चला गया। अभिमन्यु इशिका के साथ खड़ा हो गया और म्यूजिक को धीमा कर दिया गया था। नक्श ने आगे कहा, सच कहूं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते टाइम मैंने कभी तुम्हें ध्यान से देखा तक नहीं था। मेरा ध्यान किसी और तरफ था, लेकिन जैसे जैसे अब तुम्हारे साथ टाइम बिताया, मुझे तुम और अच्छी लगती जा रही हो। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। आज तुम्हारी वजह से मेरी और मिस्टर मित्तल की दोस्ती हुई। मुझे पता है तुम मुझे कामयाबी की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाओगी। नक्श अपनी तरफ से प्रपोज कर रहा था, लेकिन वहीं आसपास के लोगों को अब समझ आ गया था कि नक्श राघव मित्तल के इतने करीब इस वजह से जा पाया है क्योंकि बीच में आयशा थी। वो उसके दम पर इतनी प्रोग्रेस हासिल कर रहा था। वहीं नक्श की बात सुनकर अभिमन्यु ने अपने मन में कहा, देखते हैं कब तक तुम मिस सिंघानिया के दम पर आगे बढ़ते हो नक्श। बस आज की रात का जश्न मना लो, फिर देखते हैं कौन आगे बढ़ता है और कौन पीछे रहता है। अभिमन्यु वहां इसी इरादे से आया था कि राघव के सामने इशिका और आयशा के बीच जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। बस उसे इंतजार था तो एक सही लम्हे का।